मेरे घनिष्ठ नौजवान मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 3 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने नौजवान साथी जसकर्ण सिंह का जो गांव हसनपुर पंजाब से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं मिशन कर्मयोगी इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और आज जो दूसरी घटनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे डेली ऑडियो को नियमित रूप से ईमानदारी के साथ सुन रहे होंगे, न्यूज़ चाहे वो रेडियो की हो या दूरदर्शन की हो, उसके साथ निरंतर संबंध बनाए रखे हुए होंगे, और यहाँ तक कि अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे होंगे और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका अनुमान शायद बिल्कुल सही होना चाहिए कि कल जितनी भी न्यूज़ आपने सुनी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ कौन कौन सी हैं, और यह क्षमता आप में देर सवेर पैदा होनी ही चाहिए। दोस्तों, नो डाउट कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है उसे मैं मुख्य विषय के तहत लेता हूं और जो दूसरी घटनाएं होती हैं उन्हें फिर हम लोग सामान्य रूप से इस रूप में बात करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण जो सूचना है कह लीजिए या समाचार है कह लीजिए, वो है भारत का जो नवाचार है, या यूं कह लीजिए कि वैश्विक नवाचार में भारत की जो रैंकिंग है वो अब थोड़ी सी और बेहतर हो गई है और वो बढ़ करके फर्स्ट 50 में आ गया है। नवाचार का मतलब है कि हम क्या इनोवेशन करते हैं। ये जो जारी करने वाली जो एजेंसी है, अक्सर प्री एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसका नाम आप याद रखिएगा, जारी करने वाली एजेंसी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप WIPO के नाम से जानते हैं, और ये हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो भारत धीरे धीरे लगातार अपनी स्थिति बेहतर करता चला जा रहा है और अब हम 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए, साल भर काम आएगा, 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो यह है कि ये कोई बेहतर स्थिति नहीं है, और उसका कारण जो बहुत बड़ा बताया जाता है वो यह है कि हम अपने GDP का बहुत छोटा सा ही हिस्सा इनोवेशन पर खर्च करते हैं, जबकि दुनिया के जो दूसरे देश, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे हैं, वो अपने GDP का भारत की तुलना में 4-5 गुना अधिक खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम वैश्विक एवरेज को देखें तो वो 1.7% है, 1.7%, और हम जो खर्च कर रहे हैं अपने GDP का वो हार्डली 0.6 या 0.7% है। सोच करके देखिए कि हम कितना कम खर्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि 1/3 हम खर्च कर रहे हैं, 30% खर्च कर रहे हैं वर्ल्ड एवरेज की दृष्टि से, जबकि जो चीन है वो हमारी ही तुलना में आप सोच करके देखिए कि 2.2% खर्च कर रहा है, क्योंकि चीन के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है जब भी एशिया की बात होती है, तो 2.2%, जबकि उसका ऑलरेडी जो इनोवेशन है वो काफी आगे है। यहां तक कि जो अमेरिका है वो 2.8% करता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि भारत को इनोवेशन पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, और हमारी जो एक सीमा है वो ये भी है कि हम ज्यादातर इनोवेशन पर जो खर्च करते हैं, सच पूछे तो वो सरकारी खर्च ही है। जो हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस पर बहुत कम खर्च करती हैं। भारत में एक ही कंपनी है, टाटा मोटर्स, जो सबसे ज्यादा इनोवेशन पर खर्च करती है, और इनोवेशन पर खर्च करने वालों में उसका स्थान जो दुनिया के जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक है। जबकि जो दूसरे देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें यह देखा जाता है कि 3/4 खर्च, जो टोटल खर्च होता है उसका लगभग 3/4, या कह लीजिए 3/4 नहीं तो 60%, 50-60% सिर्फ प्राइवेट कंपनीज उठाती हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज उतना खर्च नहीं करती हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट कंपनीज अपने खर्च को बढ़ाएं। और दोस्तों, याद रखिएगा कि यह केवल प्री एग्जामिनेशन का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि सच पूछे तो मेन एग्जामिनेशन में भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी खबर आपने सुनी भी है, अखबारों में आपने पढ़ी भी है कि किस तरीके से भारत ने अब चीन के 118 जो ऐप हैं उनको और प्रतिबंधित कर दिया है, और इस तरह से टोटल 224 ऐप भारत में बैन हो चुके हैं। और इसमें पबजी भी है। पबजी चूंकि बहुत ही पॉपुलर रहा है और इसको लेकर के बड़ी आलोचना भी होती थी, युवा होते थे या कह दीजिए कि बच्चे होते थे उनके ऊपर इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट रहा है। और आपको मालूम है, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी, खासकर भारत के पास जो अपना एक्ट है उसके तहत अगर भारत को लगता है कि इससे देश की हमारी जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, जो सुरक्षा है, वो बाधित हो रही है, तो बकायदे हम उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। और ये जितने भी ऐप हैं, इस पर भारत सरकार ने ये कहा है कि हमारे नागरिकों की सूचनाओं का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को ये बेच रहे हैं, और इससे हमारे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है, यानी कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो डेटा है कह लीजिए, उनके साथ यह हेराफेरी कर रही है। खैर, चीन के साथ जो अभी हमारे तनाव बढ़ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा संबंधित है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर भारत सरकार केवल इसी के आधार पर अगर इन ऐप को बैन करती है तो वह अपने आप में गलत नहीं है। फ्रेंड्स, एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, म्यूटेशन, खासकर कोरोना को लेकर। आइए हम थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में जान लेते हैं, हालांकि आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है बदलाव। बोलचाल की भाषा में आप इसे बहुरूपिया कह सकते हैं, जो अपना रूप बदल लेता है लेकिन ऐसा नहीं बदलता कि आप उसे बिल्कुल पहचान न पाए। जैसे भारत में कोरोना है, तो भारत में यह महसूस किया गया है कि कोरोना के तीन रूप प्रचलित है, कभी ये रहता है, कभी वो रहता है, कभी वो रहता है। और अगर पूरी दुनिया में कोरोना के जितने रूप प्रचलित है अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 125 है। तो इससे प्रॉब्लम यह हो रही है कि जब कोरोना अपने रूप इस तरीके से लगातार बदलता जा रहा है तेजी के साथ, तो उसके लिए टीका बनाया कैसे जाए? तो अब बहुत साइंटिस्ट कहने लगे हैं कि भैया इसके लिए टीका बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप टीका इसके आधार पर बनाएंगे तब तक पता लगा कि उसका चरित्र बदल चुका है। इसीलिए अब यह भी कहा जाने लगा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो काम नहीं करेगी, नहीं कर रही है, क्योंकि प्लाज्मा में जब उसको कोरोना हुआ था तब कुछ दूसरा कोरोना था, और जब उसको प्लाज्मा को दूसरे पर चढ़ाया जा रहा है तो दूसरे किस्म का कोरोना है, तो कोरोना ही लेकिन वो म्यूटेट कर चुका है। तो दोस्तों, ये म्यूटेशन शब्द आपको मालूम होना चाहिए, और इसी में ही अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से कहें तो आप कह सकते हैं कि हर जीव में जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होता है। इनमें जब बदलाव होने लगता है तो इसे ही कहते हैं म्यूटेशन, है ना। वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं, चूंकि इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, इसीलिए इनमें बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन दिख जाता है। इसी तरह एक शब्द आपने सुना होगा, स्पाइक प्रोटीन। आपने कोरोना के चित्र जब देखे होंगे अखबारों में या चैनल्स पर, तो ऊपर कांटे कांटे जैसे दिखाई देते हैं ना, लगता है कि जैसे कोई गोल है और उसके ऊपर ऊपर कांटे हैं। सच पूछे तो ये जो कांटे हैं यही इसके स्पाइक प्रोटीन है, और यही वह तत्व है कह लीजिए कि जिसके आधार पर वायरस जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर में टिकता है। बस ये आप समझ लीजिए कि इसे आप कहेंगे स्पाइक प्रोटीन। जनरल नॉलेज की दृष्टि से मुझे लगता है कि इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। फ्रेंड्स, मानसून का हमारा सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार का जो हमारा संसद सत्र शुरू हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसको लेकर के बहुत जबरदस्त रूप से आलोचना भी हो रही है, कि संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा। अब आपको केवल इतना ही विचार करना है कि अगर प्रश्नकाल ही नहीं होगा तो संसद सत्र कितना उपयोगी हो सकता है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। अगर बाद में वक्त मिला तो डेफिनेटली मैं इस पर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। अब हम लोग आते हैं मुख्य विषय पर, और वह है मिशन कर्मयोगी। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी के बारे में आज अखबारों में काफी कुछ लिखा गया है, और डेफिनेटली इसके ऊपर आगे भी लिखा जाएगा, और खासकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जो मैगजीन्स होती हैं निश्चित तौर पर इस पर वो काफ़ी विस्तार के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे यहाँ योग की तीन पद्धतियाँ बताई गई हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्मयोग ये है जो कार्य को महत्व देता है, तो हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं उनको कर्मयोगी बनाने की प्रक्रिया इसके तहत शामिल है। और इनफैक्ट सच पूछे तो यह एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, यह एक प्रकार से जो सिविल सर्वेंट ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं, कैसे उनकी क्षमता में लगातार वृद्धि की जाए, ये क्षमता संवर्धन है। लगातार वृद्धि की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप देखिए कि सिविल सर्विस तो कब से चली आ रही है, इसके एग्जाम भर्ती के पैटर्न भी लगातार थोड़े बहुत बदलते रहे हैं, प्रशिक्षण भी थोड़े से बदलते रहे हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम हो रही है वो यह है कि प्रशिक्षण एक तो सभी सर्विसेज के लिए नहीं है। देखिए, जब मैं सिविल सर्विस की बात कह रहा हूं तो आप इसे केवल आईएएस तक मत लीजिएगा या यूपीएससी जो कंडक्ट करती है उस तक मत लीजिएगा। इसके तहत जितने भी केंद्रीय सेवाएं हैं, टॉप से लेकर के बॉटम तक जितने भी केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब शामिल हैं। इनफैक्ट लगभग लगभग 45 लाख, 40 लाख से 46 लाख तक के आंकड़े आपको सुनने को मिलते होंगे। इन सभी के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और उसके आधार पर बहुत जरूरी है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाए। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति सर्विस में आता है तो यूं मान करके चलिए, मोटे तौर पर चलिए, वो 25 साल की उम्र में आ जाता है एवरेज, और 60 साल की उम्र तक सर्विस में बना रहता है तो 35 साल का दौर उसका पूरा का पूरा सर्विस का होता है। और इन 35 सालों में समाज की जो एक्सपेक्टेशन है, समाज का जो स्वरूप है, वो काफी कुछ बदल चुका होता है। कुछ सर्विसेज में तो शुरू में अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती है, इसके बाद बात खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें ट्रेनिंग ही नहीं होती और उन्हें सीधे नौकरी पर लगा दिया जाता है और फिर वो लगे ही रहते हैं। बीच बीच में भी उनके लिए कोई दूसरी कोशिशें नहीं की जाती कि कैसे इनको समय के अनुकूल बनाया जाए। तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से जो सिविल सर्वेंट हैं उनके मानव संसाधन विकास का एक माध्यम है कि कैसे इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि ये जो नई चीजें हो रही हैं, नई चीजें सीख सकें, इनमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, लोगों के प्रति इनका व्यवहार बेहतर हो सके, जो लोगों की इनसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। इसके लिए ये सिस्टम शुरू किया गया है जिसे नाम दिया गया है मिशन कर्मयोगी। दोस्तों, इस मिशन कर्मयोगी में दो तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। पहला तो यह है कि एक टॉप लेवल पर प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद बनाई गई है। प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री उसमें मेंबर होंगे, कुछ चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर इसमें शिक्षाविद और जो लोक सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो सब होंगे और ये बाकायदे सबसे टॉप लेवल पर ये काम को देखेगी। इसके बाद उसके ठीक नीचे, यानी यूं कह लीजिए कि इस परिषद की सहायता के लिए क्षमता विकास आयोग होगा। क्षमता विकास आयोग ये बेसिकली योजना बनाने का काम करेगा और अलग अलग जो हमारे विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं जिनके ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी निगरानी करेगा, उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। दूसरा ये है। और तीसरा है, बकायदे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, आई गॉट कर्मयोगी के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में लगातार जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हो सकते हैं, जो मटेरियल हो सकते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते रहेंगे नेशनल लेवल के और वर्ल्ड लेवल के। इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के जो सिविल सर्वेंट है बकायदे अपना इनरोल करा सकता है। उसके लिए एक थोड़ी सी फीस होगी, वो फीस देकर के इनरोल करा लेगा और अपनी जरूरत के हिसाब से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप इसे कह सकते हैं, वो ले सकता है। तो दोस्तों, समय को देखते हुए जो थोड़ी सी बात मुझे आपको बतानी चाहिए थी वह मैंने बताई है, लेकिन डेफिनेटली यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज का है, क्योंकि सिविल सर्वेंट, आप देखेंगे सिविल सर्विसेज बकायदे आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और चूंकि ये लेटेस्ट है तो इस पर आपकी बहुत अच्छी आलोचनात्मक समीक्षात्मक तैयारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं हरगोविंद, रुपेश कुमार और उमेश कुमार सैनी सवाई माधोपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यह समाप्त करता हूं। नमस्कार।